हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वहां पर 20 मिनट में कुर्सी पर बांधी नताशा और उसके किनारे जलते हुए आग के गोले को वहां पर छोड़कर आदित्य उसे बेसमेंट से बाहर निकलने ही वाला था, तभी वहां के दरवाजे पर उसे सुनैना खड़ी हुई नजर आई। उसके माथे पर बैंडेज लगा हुआ था और हाथ पर भी 2-3 जगह स्क्रैच के निशान थे। इसके अलावा उसके चेहरे पर भी 1-2 स्क्रैचेस नजर आ रहे थे, जो कि अब एकदम ताज़ा कटे हुए निशान नहीं लग रहे थे। उसने ही आदित्य को इस तरह वहां से निकलकर जाने से पहले रोकते हुए कहा, नहीं आदि, नहीं, तुम इन लोगों की तरह नहीं हो। तुम इस तरह किसी को यहां मरने के लिए छोड़कर नहीं जा सकते। आदित्य ने जैसे ही उसे सामने देखा, वो अपनी जगह पर एकदम ही जम गया। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सुनैना यहां पर होगी। और फिर उसने सुनैना के पीछे खड़े हुए नदीम को देखा तो वो समझ गया कि वही उसे वहां पर लेकर आया है। उसने गुस्से में घूरकर नदीम को देखा तो सुनैना एकदम ही उन दोनों के बीच जाकर आदित्य के सामने खड़ी हो गई। आदित्य के इस तरह से घूरकर देखने का मतलब समझते हुए सुनैना नदीम की तरफ से सफाई देती हुई बोल पड़ी, उसकी गलती नहीं है आदित्य, उसे इस तरह से घर कर मत देखो। मैं ही उससे कहा था कि वो किसी भी कीमत पर मुझे तुम्हारे पास लेकर चले, मैंने उससे जिद की थी। सुनैना की बात सुनते हुए आदित्य ने अपने सिर पर हाथ रखा और फिर तुरंत ही आगे आकर उसने सुनैना का कंधा पकड़ा और उसे वहां से आगे लेकर जाते हुए बोला, सोना, तुम्हें चोट लगी है ना, तुम रेस्ट करो। तुम यहां पर क्यों आई? तुम्हें यहां पर नहीं आना चाहिए था। चलो तुम यहां से वापस। आदित्य की ये बात सुनकर भी सुनैना अपनी जगह से जरा सा भी नहीं मिली और उसकी आंखों में आंखें डालकर देखती हुई बोली, सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम्हें भी यहां पर नहीं आना चाहिए। और ये सब जो कुछ भी तुम कर रहे हो वो नहीं करना चाहिए आदि। छोड़ दो इसे, जाने दो, या फिर पुलिस को कॉल करके उन्हें सब कुछ बता दो जो कुछ भी हुआ। उसके बाद इसे जो भी सजा मिलेगी। आदित्य फ्रस्ट्रेशन में अपने हाथ की मुट्ठी कसकर बांधते हुए बोला, क्या कर लेगी पुलिस, ये एक दिन में जमानत पर छूट जाएगी। तुम्हें नहीं पता है कि इसके अंकल कितने पावरफुल हैं और उनके बल पर ही इस लड़की ने ये सब कुछ किया। और अगर इसे सजा नहीं मिली ना तो इसका पागलपन बढ़ता ही जाएगा। आदित्य को साइड करके वहां से अंदर आगे बढ़ते हुए सुनैना बोली, अच्छा तो क्या सजा दे रहे हो फिर तुम इसे? जान से मार रहे हो तो फिर एक बार में ही मार दो ना। इस तरह से तड़पाकर तकलीफ देकर क्या हासिल हो रहा है तुम्हें? और जान से मारकर भी क्या सुकून मिल जाएगा? फिर अगर बाद में कभी पुलिस ने तुम्हें पकड़ लिया या तुम पर कोई केस हुआ तो? तब का सोचा है आदित्य तुमने? मैं क्या करूंगी तुम्हारे बिना? आदित्य ने उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लिया और सुनैना उसकी तरफ देखते हुए ये सारे सवाल कर रही है, क्योंकि उन दोनों के ही कानों में उस लड़की नताशा के चिल्लाने की आवाज़ पड़ रही है। वो बहुत भयानक दर्द भरी चीख सुनैना से बिल्कुल भी नहीं सुनी जा रही है। सुनैना के दोनों गालों पर हाथ रखते हुए उसकी आंखों में देखकर आदित्य ने कहा, नहीं हूं मैं तुम्हारे जितना महान, नहीं माफ कर सकता मैं ऐसे लोगों को जिसने तुम्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा। और अगर हम आज ऐसे लोगों को छोड़ देंगे ना तो कल इनके जैसे 10 फिर हमारे रास्ते में आकर खड़े हो जाएंगे। उन दोनों की बातें सुनकर नताशा एकदम गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान की भीख मांगती हुई बोली, प्लीज 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 मुझे बचा लो, मैं कभी तुम दोनों के बीच नहीं आने की कोशिश करूंगी, मैं यहां से बहुत दूर चली जाऊंगी, मैं कभी लौट कर नहीं आऊंगी, प्लीज बस ये आखिरी बार मुझे माफ कर दो आदित्य सर, प्लीज। सुनैना गुस्से में उस लड़की की तरफ देखकर बोली, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे जैसे लोगों को हम कभी भी माफ नहीं करने वाले, क्योंकि तुम्हारी गलती ही माफ करने लायक नहीं है। और गलती तो अनजाने में होती है, तुमने तो सब कुछ जानबूझ कर किया। तब तुमने नहीं सोचा था जब तुमने मुझे उस कांच के बक्से में कैद किया और हम दोनों को अलग किया? यहां तक तुम तो आदित्य को मुझे तलाक देने के लिए भी कह रही थी तब। उस लड़की ने फिर से इस तरह माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब कुछ अपनी नादानी को प्यार समझ कर किया। आदित्य सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे पता चल गया है मुझे आप दोनों के बीच नहीं आना चाहिए था। और अगर माफ नहीं कर सकते तो पुलिस के हवाले कर दीजिए, मैं अपनी गलती की सजा भुगतने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज ये आग, मैं मर जाऊंगी, बहुत ज्यादा जल रही है मेरी पूरी बॉडी। उसकी बात सुनकर सुनैना ने आदित्य की तरफ देखा और धीरे से उसे इशारा किया। तो फिर आदित्य ने भी अपने सिक्योरिटी गार्ड को वो आग बुझाने का इशारा किया, लेकिन उसने नताशा को छोड़ने के लिए कुछ नहीं कहा और तुरंत ही वहां से निकलकर बाहर चला गया। उसने सुनैना से भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसकी ऐसी बातें और जिद पूरी करके वो बहुत ही ज्यादा नाराज और गुस्से में था। आदित्य को इस तरह बाहर जाते देखा सुनैना भी तुरंत वहां से बाहर जाने लगी, लेकिन वहां पर कुछ पल के लिए रुककर उसने पीछे मुड़कर देखा तो नताशा धुएं की वजह से बेहोश हो गई थी, क्योंकि अब वो कुछ भी नहीं बोल रही, न ही उसकी कुर्सी हिलडुल रही है, आग लगभग बुझ चुकी है। सुनैना ने अरविंद की तरफ देखकर उसे ऑर्डर देते हुए कहा, ध्यान रखना ये लड़की यहाँ से कहीं जानी नहीं चाहिए जब तक आदित्य तुम्हें कोई ऑर्डर ना दे। इतना बोलकर सुनैना भी तुरंत ही वहां से बाहर चली गई आदित्य के पीछे उसे देखने के लिए, क्योंकि वो समझ गई थी उसकी ऐसी जिद भरी बातों से वो नाराज होकर ही यहां से गया है। सुनैना वहां से निकलकर वापस उसके पीछे आई और वो दोनों अभी वहां पर अपने पुराने पुश्तैनी वाले बंगले में हैं और उन दोनों ने फोन करके स्वीटी और नैना सबको बता दिया है कि वो दोनों ठीक हैं, लेकिन वहां पर असल में क्या हुआ ये अभी तक किसी को भी नहीं पता है। और जैसे ही सुनैना वहां पर पहुंची आदित्य के पीछे, उसने देखा कि आदित्य घर के अंदर आया। उसने अपनी कार की चाबी उठाई और तुरंत ही वो वहां से बाहर निकलने लगा, लेकिन सुनैना तुरंत उसके रास्ते में दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई और बोली, कहां जा रहे हो रात के इस वक्त आदि? आदित्य गुस्से से उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, कहीं भी जाऊं मैं, तुम्हें क्या करना, तुम हटो मेरे रास्ते से, तुमने अपने मन की करवा ली ना, तो बस अब मुझे अपने मन की करने दो। उसकी ये बात सुनकर सुनैना को बहुत ही बुरा लगा, क्योंकि आदित्य जल्दी उससे ऐसी बेरुखी से नहीं बोलता है, लेकिन सुनैना को समझ आ रहा है कि अभी वो हर्ट है, क्योंकि फिलहाल वो दोनों अलग अलग चीज करने के लिए बोल रहे थे और आखिर में आदित्य को ही उसकी बात माननी पड़ी। उसके इस तरह से बोलने पर सुनैना की आंखों में आंसू आ गए, वो काफी इमोशनल हो गई, इसलिए वो तुरंत ही आदित्य से पूरी तरह से लिपट गई और उसने आदित्य को बहुत ही कसकर पकड़ लिया। आदित्य ने सुनैना का कंधा पकड़कर पहले तो उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन फिर जैसे ही उसके कान में सुनैना की सुबकने की आवाज पड़ी, वो एकदम ही रुक गया। आई एम सॉरी आदि, अगर तुम्हें बुरा लगा हो तो, बट तुम जानते हो ना मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि ऐसे लोगों के मर्डर का इल्जाम तुम्हारे ऊपर आए और फिर बाद में तुम्हें मुझसे दूर होना पड़े। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, नहीं देख सकती तुम्हें तकलीफ में, अरेस्ट होते हुए या कहीं भी मुझसे दूर जाते। सुनैना इसी तरह उसके गले लगकर रोती हुई बोली।
सुनैना के इस तरह से रोने की आवाज़ सुनकर आदित्य ने भी अब उसे खुद से और दूर करने की कोशिश नहीं की और उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला, अरे मुझे कुछ नहीं होगा, और वैसे भी मैं कोई खूनी मर्डरर नहीं हूँ। मैं उसे जान से नहीं मारना चाहता था, लेकिन बस उसने जो कुछ भी किया वो भी तो ठीक नहीं था। तुम खुद ही बताओ, अगर टाइम पर अरविंद और बाकी सब वहां पर ना आते तो क्या आज हम दोनों यहां पर सही सलामत खड़े होते? आंसू भरी आंखों के साथ अपनी नज़र उठाते हुए सुनैना ने आदित्य की तरफ देखा और धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया। उसे इस तरह से देखकर आदित्य ने अपनी आंखें बंद करके एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर दोबारा से अपनी आंखें खोलते हुए सुनैना की तरफ देखकर बोला, सोना प्लीज, मैं चाहता हूँ तुम मेरी स्ट्रेंथ बनो। इस तरह से तो तुम बस मुझे वीक कर रही हो और मैं वीक नहीं होना चाहता। प्लीज तुम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी तो समझो। इस तरह से अगर हम अपने दुश्मनों को छोड़ते रहेंगे तो फिर कैसे बच पाएंगे फ्यूचर में उनसे? छोड़ते रहेंगे मतलब? अभी तुमने ही तो कहा तुम उसे जान से मरने नहीं वाले थे, तो फिर? सुनैना ने उसकी आंखों में देखते हुए कन्फ्यूजन से सवाल किया, लेकिन आदित्य ने उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। आदित्य ने बस हल्के से अपना सिर हिलाया और सुनैना को लेकर वहां से अंदर आ गया। वो दोनों अभी इस बारे में बात करने ही वाले थे तभी उन्हें दरवाजे से किसी के अंदर आने की आहट सुनाई दी और उन्होंने मुड़कर उसी तरफ देखा तो अक्षत, नैना और स्वीटी वहां पर आ चुके थे। नैना अंदर आते हुए उन दोनों की तरफ देखकर एकदम ही गुस्सा करते हुए बोली, कहाँ गायब हो गए थे तुम दोनों ऐसे अचानक दो दिनों के लिए? तुम्हें पता भी है हम सब कितने ज्यादा परेशान थे तुम सब के लिए, और ये स्वीटी बेचारी इन्हीं के अकेले रहती, कम से कम इसके बारे में तो सोचा करो। इसके माँ बाप पहले ही जेल काट रहे हैं और अब तुम दोनों भी? नैना उन दोनों के चेहरे और बॉडी पर लगी हुई चोट के निशानों को देखकर चुप हो गई। अरे कुछ नहीं, वो हम दोनों बस, अपनी बहन की बात का जवाब देते हुए सुनैना ने बोलना शुरू किया, लेकिन फिर बीच में रुककर वो आदित्य की तरफ देखने लगी तो आदित्य ने धीरे से अपनी पलकें झपकाई और सुनैना ने पहले उन सबको बैठने के लिए कहा और खुद भी नैना का हाथ पकड़कर उसके साथ ही बैठ गई। आदित्य भी उन सबके सामने सिंगल वाले सोफा पर बैठ गया। तभी सुनैना ने उन सबको पूरी बात बताना शुरू किया कि किस तरह से वो दोनों किडनैप हो गए थे और वो लड़की आदित्य से ऑब्सेस्ड है और उसे पाने के लिए ये सब कर रही थी, लेकिन आदित्य ने पहले ही अपनी स्मार्ट वॉच से अरविंद को सिग्नल भेज दिया था और वो लोग टाइम पर वहां पर पहुंच गए और उन सब ने मिलकर सुनैना को बचा लिया जो कि लगभग उस पानी से भरे ग्लास बॉक्स में डूबकर मरने ही वाली थी। आदित्य उसे कमरे से निकलकर अपने गार्डों के साथ वक्त पर सुनैना को बचाने के लिए पहुंच गया और दूसरी तरफ उसकी टीम के बाकी सारे लोगों ने नताशा को भी पकड़ लिया और उसके कोई भी लोग वहां से भाग नहीं पाए। उन सभी लोगों को मार मार कर अधमरा कर दिया गया। नताशा उनकी पकड़ में आ गई और सुनैना ने ये झूठ बोल दिया कि उस लड़की को उन लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया है, क्योंकि आदित्य का सीक्रेट वो ऐसे सबके सामने बताना नहीं चाहती थी। उसे पता था बाकी लोग भी आदित्य का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझेंगे। क्रमशः